नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अंजलि। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हुई। 163 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। खोज अभियान जारी और लक्ष्य सेन, श्रीकांत और तन्वी शर्मा कल चीन मास्टर्स बैडमिंटन में चुनौती पेश करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक भर्ती, मदद, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। सम्मेलन का समापन आतंकवाद के से निपटने, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति के बनने के साथ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
Prime Minister further stated that
प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
Sovereignty and territorial integrity of nations।
भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में भारत और रूस के दीर्घकालिक और आपसी विश्वास पर आधारित संबंधों पर चर्चा की गई। श्री नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मजबूत आपसी समझ और विश्वास को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों से द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर गति मिल रही है। भाजपा अध्यक्ष ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में राजदूत अलीपोव के योगदान की भी सराहना की। रूसी राजदूत अलीपोव ने देशवासियों से सीधे जुड़ने के अनूठे प्रयास के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की भी सराहना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अपनी पहली कनाडा यात्रा के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया में प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉ. भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। कार्यक्रम में कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री जेसन केनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका एक बार फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता को नुकसान तथा प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण फोरम में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस,
दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आज से मिडिल ईस्ट एनर्जी 2026 प्रदर्शनी और सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन आगामी 3 सितंबर तक चलेगा। ये पश्चिम एशिया क्षेत्र में बिजली और ऊर्जा उपयोग की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों में से एक है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1000 को पार कर गई है और प्रभावित 8 जिलों से सुरक्षा बलों ने कई और शव बरामद किए हैं। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार लगातार हो रही बारिश के बीच राहत और बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अचानक आई भीड़ बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 163 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिनमें पिछले महीने की 26 तारीख के बाद बचाए गए 5 और लोग भी शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार कल तक बचाए गए भारतीयों की संख्या 158 थी। इसके अलावा आज चीन से रवाना होने वाले लोगों की संख्या 151 दर्ज की गई है। यूक्रेन में हुए एक हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर वहां स्थित भारतीय दूतावास ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वो शोक संतप्त परिवार के लगातार संपर्क में है और उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूतावास मृतक के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस भेजने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय दूतावास इस मामले को लेकर यूक्रेन के अधिकारियों और संबंधित कंपनी के भी संपर्क में है। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी की जोड़ी पहले दौर में मलेशिया के जुनैदी आरिफ और कानखाई जिंग के खिलाफ उतरेगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो का मुकाबला टोनरंग साहेंग और टोनकीद साहेंग से होगा। सोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की दूसरी भारतीय मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ताइपी के वो ग्युयान जूंग और ली चियासीन के साथ खेलेगी। इससे पहले आज महिला सिंगल्स में उन्नीत हुड्डा और पुरुष डबल्स में हरिहन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी का अभियान हार के साथ समाप्त हुआ। उन्नति हुड्डा को पहले दौर में दक्षिण कोरिया के किम गायून ने हार का सामना करना पड़ा, जबकि एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी को बीच में ही मुकाबला छोड़ना पड़ा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हुई। 163 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। खोज अभियान जारी और लक्ष्य सेन, श्रीकांत और तन्वी शर्मा कल चीन मास्टर्स बैडमिंटन में चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।